नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। और स्वागत करता हूँ दी अनचार्टेड स्टोरीज ऑफ महाभारता के सीजन 2 में। दोस्तों, हमारा आज का जो एपिसोड है वो असल में इसके पहले वाले एपिसोड से रिलेटेड है, और इस एपिसोड का नाम है नरकासुर द इविल सन ऑफ गॉड। अब जो आज के एपिसोड को डायरेक्टली सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैंने एक एपिसोड किया है भागदत्त नाम से, तो वो भागदत्त कैरेक्टर जो है वो नरकासुर के बेटे लगते हैं, जो आज का कैरेक्टर है, मतलब नरकासुर। तो जिन्होंने पिछला एपिसोड नहीं सुना है और डायरेक्टली इस एपिसोड को सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके पहले वाले एपिसोड को सुन लें, ताकि इस नरकासुर के बारे में जानने में आपको और मज़ा आएगा। तो दोस्तों, ये जो कैरेक्टर हैं नरकासुर, इनका असल में महाभारत की लड़ाई के साथ कोई डायरेक्टली कोई नाता नहीं है, लेकिन इनसे रिलेटेड जो घटनाएं हैं वो माइथोलॉजिकली एंड हिस्टोरिकली ये एंगल से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, इसीलिए मैंने ये एपिसोड आप लोगों के लिए बनाया है। तो आप अपने चाय कॉफ़ी ड्रिंक्स के साथ तैयार हो जाएं, अपने कॉर्नर पर बैठ जाएं और इस एपिसोड का मज़ा लें। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि बहुत पहले की बात है, जब हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस हुआ करता था, एक असुर हुआ करता था। एक बार वो क्या करता है, ये हिरण्याक्ष धरती माता को, जिसको हम भूदेवी भी कहते थे, तो धरती माता को ये पानी के अंदर छिपा देता है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये पुराण में भी ये कहानी है कि विष्णु जी एक वराह का अवतार लेके वो जाते हैं, पृथ्वी को पानी से निकालते हैं और फिर उनको बचाते हैं। वराह जंगली सुअर के रूप को कहते हैं, और कहते हैं कि इसी प्रोसेस में जो विष्णु जी का वराह रूप है उसमें उनका एक दांत टूट के भूदेवी पे गिर जाता है, पृथ्वी पे गिरता है, जिससे कि नरका पैदा होते हैं। तो असल में ये जो नरका है ये विष्णु जी के वराह रूप और भूदेवी इनके बेटे लगते हैं। अब नरका का जैसे जन्म हुआ तो भूदेवी ने नरका के लिए विष्णु जी से वरदान मांग लिया कि इसकी आयु लंबी हो, इसे कोई ना मार पाए, और विष्णु जी ने ये वरदान भी दे दिया था। इसके अलावा कहीं कहीं ये भी बताया गया है कि भूदेवी ने ऐसा वरदान मांगा था कि जब तक वो खुद ना चाहे तब तक ये नरका मर नहीं सकता है, और कहते हैं कि बाद में राजा जनक ने इनको गोद लिया था, ये नरका को। तो नरका का नेचर जो था वो शुरू से ही बुरा नहीं था, वो अच्छे थे, उनको अच्छी सीख मिली थी, लेकिन उनका जो संगत है वो बहुत ख़राब था। तो नरका के संगत में थे एक बानासुर नाम के राक्षस। तो धीरे धीरे उस बानासुर के साथ में रहते रहते ये नरका में भी वो असुरों वाली प्रवृत्ति आ जाती है, तो जिससे कि ये नरका से नरकासुर बन जाता है। अब ये जो नरकासुर है, एक तो ये विष्णु के बेटे हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता है, कोई मार नहीं सकता है, और इनमें शक्तियाँ भी बहुत हैं, तो इस चीज़ का इसमें घमंड आ जाता है, और वो धीरे धीरे सारे लोगों को ये कवर करना शुरू करता है, मतलब पहले एक राजा, दूसरे राजा, तीसरे राजा को, इस तरह से। तो ऐसे ही करते करते वो प्रगज्योतिषा नाम का एक जगह है, जो मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया है कि आज के डेट में उसे आसाम मानते हैं, तो प्रगज्योतिषा नाम के राज्य में जाते हैं और वहाँ के राजा को हटा के खुद राजा बन जाते हैं। अब ये इतना अत्याचारी था कि वहाँ पे कहते हैं कि 16,000 राजकुमारियों को इसने बंदी बनाया था, ये नरकासुर ने। इसके अलावा वो स्वर्गलोक में भी हमला कर देता है, जहाँ पे इंद्र हैं, इंद्र का राज्य छीन लेता है, और फिर जो देवताओं की माँ है अदिति, ये उनके भी गहने चुरा लेता है। तो अब इतना सारा अत्याचार ये करता है इतने सारे लोगों पे, देवताओं पे, कि सब त्रस्त होके सब जाते हैं कृष्ण के पास में और उनसे विनती करते हैं कि भाई आप इससे हमें बचाओ, ये इतना अत्याचारी है। तो उस टाइम पे सत्यभामा भी साथ में थी, और ये जब सुनती हैं कि इस असुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना के रखा है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तो वो कृष्ण जी को कहती है कि इसको मारना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक बात आपको बताऊं कि असल में सत्यभामा जो है वो भूदेवी का ही रूप है, ठीक है। जैसे कि कृष्ण विष्णु के रूप हैं, उसी तरीके से सत्यभामा जो है वो भूदेवी की रूप है। तो अब ये लोग नरकासुर पे चढ़ाई कर देते हैं लड़ाई करने के लिए वहाँ जाने के बाद। अब लड़ाई जब होता है वहाँ पे, तो कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है जब नरकासुर कृष्ण को बेहोश कर देते हैं। अब कृष्ण को बेहोश होता देख सत्यभामा गुस्से से पागल हो जाती हैं। अब वो फिर गुस्से से वो कृष्ण जी का वो चक्र यूज़ करती हैं और जिससे कि वो नरकासुर को मार देती हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट एक ये है कि जब भूदेवी ने वरदान मांगा था इसके मरने का, एक कहानी के अनुसार कि जब तक मैं ना चाहूँ तब तक ये नहीं मरे, और इधर सत्यभामा जो हैं वो भूदेवी का ही रूप है, और कृष्ण इस बात को जानते थे कि वो सत्यभामा के थ्रू ही मर सकता है क्योंकि उन्होंने ही वो वरदान अपने पिछले रूप में मांगा हुआ है। तो वो जानबूझ के बेहोश हो जाते हैं जिससे कि उनको गुस्सा आए और वो गुस्से में फिर नरकासुर को मार दें। तो यहाँ पे जब नरकासुर मर जाता है तो कृष्ण जो 16,000 राजकुमारियाँ हैं उनको सबको आज़ाद कर देते हैं और फिर उनके रिक्वेस्ट पे ये उनसे शादी करते हैं। तो तभी आज के डेट में सब कहते हैं कि कृष्ण की 16,000 बीवियाँ थी। तो असल में ये जो 16,000 बीवियाँ जो हैं वो यही राजकुमारी लोग हैं जिसको नरकासुर किडनैप करके रखा हुआ था। तो दोस्तों ये तो कहानी थी कि नरकासुर कौन थे, उनको कितना पावर था, उनको वरदान क्या था। अब आपको एक इंटरेस्टिंग सा कहानी सुनाता हूँ जो कामाख्या देवी से रिलेटेड है। अभी मुझे लगता है कि सारे लोगों को पता होगा कि कामाख्या देवी का एक मंदिर है जो आसाम में है और जितने भी पीठ हैं उसमें से एक पीठ वो भी माना जाता है जहाँ पे सती माता का योनि या गर्भ का हिस्सा गिरा था, इसीलिए वो मंदिर फर्टिलिटी के लिए बहुत माना जाता है, लोग वहाँ पे बच्चे के लिए पूजा अर्चना करने जाते हैं। इसके अलावा भी कामाख्या देवी का मंदिर बहुत सारे कारणों से फेमस है। अभी भी कहते हैं जैसा कि वहाँ पे कि माता को पीरियड्स आते हैं और 3 दिनों तक वो कपाट बंद किया जाता है और उसी टाइम पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका पानी लाल हो जाता है। रीज़न अभी तक कोई नहीं जान पाया है, बट अब ये दैविक शक्ति है या जो भी है। तो उनसे रिलेटेड एक कहानी है कि नरकासुर जो था वो कामाख्या देवी को देख के बहुत प्रभावित हो गया था और वो उनसे शादी करना चाहता था। तो वो शादी के लिए कामाख्या देवी के पास जाता है और उनसे शादी का प्रपोजल उनके सामने रखता है। अब कामाख्या देवी क्या कहती हैं इससे कि ठीक है चलो मैं तुमसे शादी करूंगी, बट मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें सुबह होने से पहले रात भर में तुम्हें नीलांचल पर्वत पे नीचे से लेके ऊपर तक सीढ़ी बनाना होगा और वहाँ पे मेरे लिए विश्राम गृह बनाना पड़ेगा। तो ये कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ और फिर ये सीढ़ी बनाने में लग जाता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है धीरे धीरे रात पार होती है तो अब लगभग सुबह होने का टाइम रहता है, बट सुबह हुआ नहीं था। कामाख्या देवी देखती हैं कि ये कहीं सच में ना ये सारे स्टेयर्स जो है जो सीढ़ी है वो बना ना दे। तो इस डर से वो क्या करती हैं, ज़बरदस्ती एक मुर्गे को पकड़ के उसे डाक लगवा देती है। डाक लगवा देती है मतलब बांग दिलवा देती है जिससे कि ये पता चल जाए कि अब सुबह हो गई है। अब नरकासुर जैसे ही मुर्गे की डाक सुनता है तो वो समझ जाता है कि भाई अब तो सुबह हो गया तो मैं अपना चैलेंज पूरा नहीं कर पाया। तो अब उसका गुस्सा जो है वो रहता है उस मुर्गे पे कि तूने ही आवाज़ दी जिससे कि सुबह हो गया। तो वो उस मुर्गे को खदेड़ के जाके पकड़ता है और फिर उसको मार देता है। तो अब कहते हैं कि जिस जगह पे ये उस मुर्गे को पकड़ के मार देता है उस जगह का नाम जो है उस वो कुकुटाचकी के नाम से फेमस है और कई जगहों पे इसे कुकुरक्ता के नाम से भी जाना गया है। और जो सीढ़ी है जो आधी बनी थी उसको आज के डेट में मेखेलौजा पथ के नाम से जानते हैं। तो अब इस वर्जन के दो एंडिंग्स हैं, एक तो है जिसमें कि जो कामाख्या देवी हैं वो माया की मदद से विष्णु जी के हेल्प से वो नरकासुर को मार देती हैं, और दूसरा है जहाँ पे कि कहते हैं कि वो काली का रूप लेके नरकासुर को मारती है। अब ये जो नरकासुर जिस दिन मरता है वो दिन जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि उस दिन से रिलेटेड बहुत इंसिडेंट्स हैं अलग अलग कल्चर में। तो जिस दिन नरकासुर मरता है उसको नरका चतुर्दशी कहा जाता है। अब नरका चतुर्दशी जो है वो गोवा में बहुत फेमस है। आप अगर कभी गोवा जाएंगे तो वहाँ का वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रेशन है जिसे हम लोग दिवाली के रूप में मनाते हैं। अभी दिवाली का मेनली कनेक्ट जो है वो राम जी से है, लेकिन अगर आप गोवा जाएंगे तो वहाँ पे नरकासुर का एक पुतला बनाया जाता है जिसमें कि आग लगा के जलाते हैं और फिर दिवाली मनाते हैं। उसके पीछे की कहानी क्या है कि नरकासुर गोवा में वहाँ के राजा को जाके मार दिया था और वहाँ की 16,000 कन्याओं को वो अपने अंडर में वो किडनैप करके रख लिया था, जो कि बाद में कृष्ण जी जाते हैं और उसको मारते हैं और दोनों के बीच में कहते हैं लड़ाई होती है और ये लड़ाई जो है वो रात भर होता है नरकासुर और कृष्ण के बीच में। और कृष्ण जो है नरकासुर को सुबह होने के पहले उसको मार पाते हैं, मतलब सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग जिसके कहते हैं। और नरकासुर को मारने के बाद जो खून है वो अपने पूरे मुंह में लगा के बाहर निकलते हैं जहां से वो उनको मारते हैं, जो कि दर्शाता था कि ये विजयी होके निकले हैं। और फिर कृष्ण जी को तेल से और दूध से फिर नहला के साफ किया जाता है। अब ये जो कल्चर है ना ये आज के डेट में भी है वहाँ पे कि अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे जो बड़े लोग हैं उनसे छोटे एज में वो आशीर्वाद के रूप में तेल लेते हैं और फिर वो दूध दूध से नहाते हैं और फिर घर को सजाते हैं और फिर जो पटाखे उठाके जलाते हैं लाइट करते हैं। और जब कृष्ण जी जब नरकासुर को मार देते हैं वहाँ पे और सारी जो लड़कियाँ रहती हैं उनको आज़ाद करते हैं, तो वो अपना घर जाके अपने अपने घरों में वो लाइट जलाती हैं, ये जताने के लिए दिखाने के लिए कि अब हम लोग सेफ हैं और यहाँ पे रोशनी आ चुकी है। तो दिवाली का ये रूप है वहाँ पे गोवा में। अब नॉर्मल दिवाली का जो दूसरा दिन है जिसे हम लोग छोटी दिवाली कहते हैं, छोटी दिवाली को भी असल में नरक चतुर्दशी के रूप से जाना जाता है। अभी बंगाल का वर्जन मैं आपको बताता हूँ कि बंगाल वर्जन में इसे भूत चतुर्दशी कहा जाता है। उस दिन माना जाता है कि आपके जो 14 पीढ़ी के जो लोग हैं वो पृथ्वी पे आते हैं अपने अपने घरों में, मतलब जो जिस घर से बिलोंग करते हैं, और उन्हीं के लिए भूत चतुर्दशी में कहते हैं कि 14 दिए जलाए जाते हैं जो कि उनको गाइड करते हैं कि वो उसी को देख के अपने घरों तक पहुंचते हैं और फिर उस अपने घर से जितने भी बुरी चीज़ें हैं वो लोग सबको ठीक करते हैं और ठीक करके वापस वो चले जाते हैं। तो ये भूत चतुर्दशी का कहानी है। तो दोस्तों ये कुछ कहानियाँ थी नरकासुर से रिलेटेड, उनके जन्म से रिलेटेड, उनकी जीवनी से रिलेटेड, उनके उनके वध से रिलेटेड। और एक छोटा सा कहानी है कि पिछले जन्म में एक राजा हुआ करता था, तो उस राजा की 16,000 बेटियाँ थी और उस राजा के घर में एक बार एक ऋषि मुनि आते हैं और ऋषि मुनि आते हैं जब, तो उनकी जो बेटियां हैं वो उस ऋषि मुनि को देख के वो सब अट्रैक्ट हो जाती हैं उनके तरफ। तो इससे राजा जो है एकदम से गुस्से में आ जाता है और अपनी बेटियों को श्राप दे देता है। अब बेटियां गड़गड़ाने लग जाती हैं तो बेटियों के गड़गड़ाने पे राजा को दया आ जाता है और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, जब तुम लोगों का अगला जन्म होगा उसमें यही ऋषि जो आए हैं ये तुम्हारे पति होंगे। और कहते हैं कि जो अगला जन्म होता है उस अगले जन्म में जो राजा है वो नरकासुर बनता है और ये किडनैप करता है इसी जितनी राजकुमारियां हैं उनको। और कृष्ण जो है वो ऋषि का रूप थे पिछले जन्म में, जो कि इस जन्म में कृष्ण बनते हैं और फिर उनकी शादी इन 16,000 राजकुमारियों के साथ होता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी नरका से रिलेटेड। और आपने देखा कि नरका जो है वो खुद भगवान के बेटे हैं, विष्णु के बेटे हैं, लेकिन संगति खराब होने से क्या होता है, मतलब वो नरका से नरकासुर बन गया। तो बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद आप लोगों तक इंटरेस्टिंग और अनसुनी कहानियाँ सुनाने तक का है, बिना किसी रिलीजियस बिलीफ को चोट पहुँचाए हुए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज़ कुछ सुनाओ यार के इंस्टा पेज पे या फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल में ज़रूर लिख के भेजें। और इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एक नए किरदार और कुछ रोचक कहानियों के साथ में। तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ सुनाओ यार, ओनली विद अमित रवानी।
If you've been hurt by a truck, you can call Colombo Law 24/7 and we'll be there to make sure you're taken care of. When someone is hurt by a truck, Colombo Law is the law firm people call to get answers. Hurt by a truck? Call Colombo Law.